Cambridge International Examinations. International General Certificate of Secondary Education in Hindi as a Second Language. Specimen Listening Comprehension for Examination from 2019. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
भारतीय खेलकूद महासंघ के उपाध्यक्ष सुनील चोपड़ा ने कहा कि महासंघ 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों वाले बहु खेलकूद प्रतियोगिता को कामयाब बनाने के लिए काफी संजीदा है. चोपड़ा ने कहा कि 2020 में होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए खेलकूद अधिकारियों ने 3,80,00,000 रुपयों का बजट रखा है. भारतीय राज्य गोवा ने इसकी मेजबानी करने की इच्छा जताई है. भारतीय खेलकूद महासंघ के उपाध्यक्ष सुनील चोपड़ा ने कहा कि महासंघ 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों वाले बहु खेलकूद प्रतियोगिता को कामयाब बनाने के लिए काफी संजीदा है. चोपड़ा ने कहा कि 2020 में होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए खेलकूद अधिकारियों ने 3,80,00,000 रुपयों का बजट रखा है. भारतीय राज्य गोवा ने इसकी मेजबानी करने की इच्छा जताई है.
संवाद दो.
नमस्ते बहन जी, कहाँ जाना है आपको?
जी पुष्कर जाना है, दो टिकट दे दीजिए.
जरूर. वातानुकूलित बस से जाना चाहेंगी या साधारण बस से?
गर्मी बहुत है, वातानुकूलित ही अच्छी रहेगी.
ठीक है, 1,250 रुपए लगेंगे.
यह लीजिए. बस कहाँ लगी है?
11 नंबर पर, वहां अगली कतार के पीछे. नमस्ते बहन जी, कहाँ जाना है आपको?
जी पुष्कर जाना है, दो टिकट दे दीजिए.
जरूर. वातानुकूलित बस से जाना चाहेंगी या साधारण बस से?
गर्मी बहुत है, वातानुकूलित ही अच्छी रहेगी.
ठीक है, 1,250 रुपए लगेंगे.
यह लीजिए. बस कहाँ लगी है?
11 नंबर पर, वहां अगली कतार के पीछे.
संवाद तीन.
यात्री कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म एक से रवाना हो रही है. लखनऊ से आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस तकनीकी गड़बड़ी के कारण आधे घंटे के विलंब से चल रही है. पुणे से आने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म 10 पर आ रही है. जयपुर से होकर अजमेर जाने वाली पिंक सिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म 4 से रवाना होगी. यात्री कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 1 से रवाना हो रही है. लखनऊ से आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस तकनीकी गड़बड़ी के कारण आधे घंटे के विलंब से चल रही है. पुणे से आने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म 10 पर आ रही है. जयपुर से होकर अजमेर जाने वाली पिंक सिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म 4 से रवाना होगी.
संवाद 4.
नमस्कार, मराठा मंदिर, कहिए क्या सेवा करूं?
नमस्कार, क्या आज रात के शो के टिकट मिल सकते हैं?
प्रथम श्रेणी और बालकनी के कुछ टिकट बचे हैं, कितने चाहिए आपको?
प्रथम श्रेणी के 2, दाहिने कोने की सीटें दे सकें तो अच्छा होगा।
दाहिने और बाएं कोने की सीटें तो भर चुकी हैं, बीच के गलियारे की सीटें बुक कर सकता हूँ?
जी कर दीजिए, धन्यवाद।
नमस्कार, मराठा मंदिर, कहिए क्या सेवा करूं?
नमस्कार, क्या आज रात के शो के टिकट मिल सकते हैं?
प्रथम श्रेणी और बालकनी के कुछ टिकट बचे हैं, कितने चाहिए आपको?
प्रथम श्रेणी के 2, दाहिने कोने की सीटें दे सकें तो अच्छा होगा।
दाहिने और बाएं कोने की सीटें तो भर चुकी हैं, बीच के गलियारे की सीटें बुक कर सकता हूँ?
जी कर दीजिए, धन्यवाद। संवाद 5।
साहित्य प्रेमियों के लिए एक शुभ सूचना। हिंदी कथाकार भीष्म साहनी की जन्मशती के अवसर पर आज उनकी रचनाएं आधे दामों पर बेची जा रही हैं। यदि आप उनकी रचनाएं खरीदना चाहते हैं तो पुस्तक मेले के केंद्रीय हॉल में लगे भीष्म साहनी पंडाल में पधारें, जहां आप उनकी रचनाओं के साथ साथ उन पर बनी फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक भी आधे दामों पर खरीद सकते हैं। साहित्य प्रेमियों के लिए एक शुभ सूचना। हिंदी कथाकार भीष्म साहनी की जन्मशती के अवसर पर आज उनकी रचनाएं आधे दामों पर बेची जा रही हैं। यदि आप उनकी रचनाएं खरीदना चाहते हैं तो पुस्तक मेले के केंद्रीय हॉल में लगे भीष्म साहनी पंडाल में पधारें, जहां आप उनकी रचनाओं के साथ साथ उन पर बनी फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक भी आधे दामों पर खरीद सकते हैं।
संवाद 6।
हेलो सपना, तुम यहां कैसे?
क्यों संजीव, क्या मेरा काम पर आना मना है?
मजाक छोड़ो, क्या तुम्हें आज रश्मि के घर नहीं होना चाहिए?
अरे बाप रे, आज तो उसका जन्मदिन है, अब क्या करूं?
कुछ खास नहीं, बस टिकट कटाकर किसी दूसरे देश चली जाओ।
तुम्हें तो हर वक्त मजाक की सूझती है।
नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हें इतना भी याद नहीं कि वह शादी की सालगिरह मना रही है, जन्मदिन नहीं। हेलो सपना, तुम यहाँ कैसे?
क्यों संजीव, क्या मेरा काम पर आना मना है?
मजाक छोड़ो, क्या तुम्हें आज रश्मि के घर नहीं होना चाहिए?
अरे बाप रे, आज तो उसका जन्मदिन है, अब क्या करूं?
कुछ खास नहीं, बस टिकट कटाकर किसी दूसरे देश चली जाओ।
तुम्हें तो हर वक्त मजाक की सूझती है।
नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हें इतना भी याद नहीं कि वह शादी की सालगिरह मना रही है, जन्मदिन नहीं। ये अभ्यास 1 का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास 2 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 2 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 2, संवाद 7। जाने माने फिल्म समालोचक और पत्रकार दिनेश पंडित पिछले दिनों लेह लद्दाख की यात्रा से लौटे हैं। लेह से नदारद सिनेमा पर उनके एक संस्मरण को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। यह संस्मरण आपको 2 बार सुनाया जाएगा।
नमस्कार, मैं हूं दिनेश पंडित। पिछले दिनों एक नई फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कश्मीरी शहर लेह जाने का मौका मिला। लद्दाख क्षेत्र की राजधानी लेह की खूबसूरती को हिंदी की कई फिल्मों में उतारा गया है। मशहूर फिल्म थ्री इडियट्स की शूटिंग यहाँ के ड्रक व्हाइट लोटस स्कूल में हुई थी, जिसे अब रैंचो स्कूल के नाम से जाना जाता है। पैंगोंग झील को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इसी फिल्म को जाता है। लेकिन अगर आप इन फिल्मों को लेह में देखना चाहें तो निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि लेह में कोई सिनेमा हॉल नहीं है। लेह का एकमात्र सिनेमा हॉल दर्शकों की कमी के कारण वर्षों पहले बंद हो गया था, लेकिन जिन दिनों यह चलता था तब भी यहां नई फिल्में कभी नहीं लगती थीं। पुरानी फिल्मों को देखने जाने वालों में ज्यादातर वे मजदूर होते थे जो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों से वहां आते थे। ऐसे में यहां फिल्म देखने की कोई संस्कृति विकसित नहीं हो पाई और यहां की एक पूरी पीढ़ी सिनेमा हॉल में फिल्म देखे बिना ही बड़ी हो गई। मगर अब लेह पर भी फिल्मी रंग चढ़ने लगा है। फिल्मों के शौकीन और पत्रकारिता एवं जनसंचार के पूर्व प्रोफेसर जिलाधिकारी सौगत बिस्वास ने एक अभिनव शुरुआत की है और लेह के कभी कभार प्रयोग में आने वाले एक पुराने सभागार को छोटे सिनेमा हॉल में बदल दिया है। इसमें शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को हर शनिवार हिंदी और अंग्रेजी की फिल्में और वृत्तचित्र सिनेमा हॉल के अनुभव के साथ मुफ्त में दिखाए जाते हैं। लेह लद्दाख की अनूठी संस्कृति पर कई शानदार फिल्में बनी हैं, पर यहां के लोग उनके बारे में जानते भी नहीं थे। दसवीं की एक छात्रा सोनम ने बताया कि सिनेमा कैसा होता है, ये उसे पहली बार पता चला। एक अन्य छात्रा जीनत को उम्मीद है कि जिलाधिकारी सौगत बिस्वास के प्रयासों से एक दिन लेह में मल्टीप्लेक्स भी खुल जाएगा, इसलिए लेह के बच्चे उन्हें फिल्म वाले अंकल कहकर बुलाने लगे हैं।
अभ्यास दो की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे।
नमस्कार, मैं हूं दिनेश पंडित। पिछले दिनों एक नई फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कश्मीरी शहर लेह जाने का मौका मिला। लद्दाख क्षेत्र की राजधानी लेह की खूबसूरती को हिंदी की कई फिल्मों में उतारा गया है। मशहूर फिल्म थ्री इडियट्स की शूटिंग यहां के ड्रक व्हाइट लोटस स्कूल में हुई थी, जिसे अब रैंचो स्कूल के नाम से जाना जाता है। पैंगोंग झील को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इसी फिल्म को जाता है। लेकिन अगर आप इन फिल्मों को लेह में देखना चाहें तो निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि लेह में कोई सिनेमा हॉल नहीं है। लेह का एकमात्र सिनेमा हॉल दर्शकों की कमी के कारण वर्षों पहले बंद हो गया था, लेकिन जिन दिनों यह चलता था तब भी यहां नई फिल्में कभी नहीं लगती थीं। पुरानी फिल्मों को देखने जाने वालों में ज्यादातर वे मजदूर होते थे जो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों से वहां आते थे। ऐसे में यहां फिल्म देखने की कोई संस्कृति विकसित नहीं हो पाई और यहां की एक पूरी पीढ़ी सिनेमा हॉल में फिल्म देखे बिना ही बड़ी हो गई। मगर अब लेह पर भी फिल्मी रंग चढ़ने लगा है। फिल्मों के शौकीन और पत्रकारिता एवं जनसंचार के पूर्व प्रोफेसर जिलाधिकारी सौगत बिस्वास ने एक अभिनव शुरुआत की है और लेह के कभी कभार प्रयोग में आने वाले एक पुराने सभागार को छोटे सिनेमा हॉल में बदल दिया है। इसमें शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को हर शनिवार हिंदी और अंग्रेजी की फिल्में और वृत्तचित्र सिनेमा हॉल के अनुभव के साथ मुफ्त में दिखाए जाते हैं। लेह लद्दाख की अनूठी संस्कृति पर कई शानदार फिल्में बनी हैं, पर यहां के लोग उनके बारे में जानते भी नहीं थे। दसवीं की एक छात्रा सोनम ने बताया कि सिनेमा कैसा होता है, ये उसे पहली बार पता चला। एक अन्य छात्रा जीनत को उम्मीद है कि जिलाधिकारी सौगत बिश्वास के प्रयासों से एक दिन लेह में मल्टीप्लेक्स भी खुल जाएगा, इसलिए लेह के बच्चे उन्हें फिल्म वाले अंकल कहकर बुलाने लगे हैं।
अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास तीन, खेलों में फैलते भ्रष्टाचार की समस्या पर पत्रकार और लेखिका विमला घोष के विचारों को ध्यान से सुनिए और दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। ये विचार आपको दो बार सुनाए जाएंगे।
बीसवीं सदी में देखने का खेल फुटबॉल होता था, अगर आपको मैच का टिकट मिल जाए, और सुनने का खेल क्रिकेट होता था, अगर आपके पास रेडियो हो। भारत में हॉकी के खेल के रूप में एक तीसरा खेल भी लोकप्रिय हुआ था। सस्ता और आसान होने के कारण यह गांव-गांव में खेला जाता था, किंतु कुछ समय के गौरव के बाद पता नहीं क्यों यह खेल हाशिए पर चला गया। क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल तेज रफ्तार का खेल था, यह कम समय में खेला जाता था। आर्कटिक की ठंड और रेगिस्तानी गर्मी के अलावा उसे मौसम से कोई दिक्कत नहीं थी। क्रिकेट का खेल एक उबाऊ उपन्यास की तरह था जो कभी खत्म नहीं होता था। साथ ही वह इतना अनिश्चित था कि हल्की सी बारिश भी उसे रोक सकती थी। पुरानी दिनों में एक क्रिकेट टेस्ट मैच हफ्ते भर चलता था। तब क्रिकेट देखना और इसका आनंद उठाने के लिए समय निकाल पाना नौकरी पेशा लोगों के बूते की बात नहीं थी। भले ही ढीले नियमों वाली सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो, जिन्हें अपनी नौकरी या पेशे में ऊपर जाने की धुन थी, उनके लिए तो इसकी सिफारिश नहीं की जा सकती थी। इसके अधिकांश दर्शक वे युवा थे जिनकी उम्र अभी नौकरी की नहीं हुई थी। वे सेवानिवृत्त और उच्च वर्ग के इस उबाऊ खेल का एक रोचक विलोम प्रस्तुत करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल के प्रशंसक परंपरागत रूप से सामाजिक आर्थिक आधारों पर बटे हुए होते हैं, लेकिन ये कहना पूरी तरह सही नहीं है। फुटबॉल खेलने के लिए बहुत चीजों की जरूरत नहीं है, गेंद, लगन और क्षमता ही काफी है। इसलिए फुटबॉल विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व कर पाया है। खेलों के जनाधार में पहली गंभीर बढ़ोतरी 60 के एक दशक में रेडियो के आने के साथ हुई, लेकिन खेलों में पैसे का प्रवेश टेलीविजन क्रांति के साथ हुआ। जब से बहुत धन आया है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही भ्रष्टाचार की बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। खिलाड़ियों का पेशेवर जीवन भी छोटा होने लगा है। और उनमें से अधिकतर खिलाड़ियों को तब कुछ नहीं सूझता जब पलक झपकते ही उनका करियर समाप्त हो जाता है। टीम के हर दो नायकों की तुलना में बाकी के 9 बहुत जल्दी भुला दिए जाते हैं और बाहर बेंच पर बैठे 2 दर्जन खिलाड़ियों को तो कोई याद भी नहीं रखता। इसलिए जल्दी से जल्दी पैसा कमाकर भविष्य सुरक्षित कर लेने की होड़ में बड़े बड़े खिलाड़ी और टीमें भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती देखी गई हैं। क्रिकेट और फुटबॉल की दुनिया में नीचे से लेकर सर्वोच्च स्तरों तक भ्रष्टाचार के अनेक मामलों की छानबीन चल रही है, लेकिन संभावना यह है कि सामने आए हर ऐसे मामले की तुलना में 10 और मामले ऐसे होंगे जो पकड़ में नहीं आ सके। क्रिकेट के सबसे शक्तिशाली नाम सटोरियों से जुड़े पाए गए हैं। फुटबॉल में भी भ्रष्टाचार की दीमक नीचे से लेकर ऊपर तक फैल चुकी है।
अभ्यास 3 की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे।
20वीं सदी में देखने का खेल फुटबॉल होता था, अगर आपको मैच का टिकट मिल जाए, और सुनने का खेल क्रिकेट होता था, अगर आपके पास रेडियो हो। भारत में हॉकी के खेल के रूप में एक तीसरा खेल भी लोकप्रिय हुआ था। सस्ता और आसान होने के कारण यह गांव-गांव में खेला जाता था, किंतु कुछ समय के गौरव के बाद पता नहीं क्यों यह खेल हाशिए पर चला गया। क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल तेज रफ्तार का खेल था। यह कम समय में खेला जाता था। आर्कटिक की ठंड और रेगिस्तानी गर्मी के अलावा उसे मौसम से कोई दिक्कत नहीं थी। क्रिकेट का खेल एक उबाऊ उपन्यास की तरह था जो कभी खत्म नहीं होता था। साथ ही वह इतना अनिश्चित था कि हल्की सी बारिश भी उसे रोक सकती थी। पुरानी दिनों में एक क्रिकेट टेस्ट मैच हफ्ते भर चलता था। तब क्रिकेट देखना और इसका आनंद उठाने के लिए समय निकाल पाना नौकरी पेशा लोगों के बूते की बात नहीं थी। भले ही ढीले नियमों वाली सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो, जिन्हें अपनी नौकरी या पेशे में ऊपर जाने की धुन थी, उनके लिए तो इसकी सिफारिश नहीं की जा सकती थी। इसके अधिकांश दर्शक वे युवा थे जिनकी उम्र अभी नौकरी की नहीं हुई थी। वे सेवानिवृत्त और उच्च वर्ग के इस उबाऊ खेल का एक रोचक विलोम प्रस्तुत करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल के प्रशंसक परंपरागत रूप से सामाजिक आर्थिक आधारों पर बटे हुए होते हैं, लेकिन ये कहना पूरी तरह सही नहीं है। फुटबॉल खेलने के लिए बहुत चीजों की जरूरत नहीं है, गेंद, लगन और क्षमता ही काफी है। इसलिए फुटबॉल विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व कर पाया है। खेलों के जनाधार में पहली गंभीर बढ़ोतरी 60 के दशक में रेडियो के आने के साथ हुई, लेकिन खेलों में पैसे का प्रवेश टेलीविजन क्रांति के साथ हुआ। जब से बहुत धन आया है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही भ्रष्टाचार की बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। खिलाड़ियों का पेशेवर जीवन भी छोटा होने लगा है और उनमें से अधिकतर खिलाड़ियों को तब कुछ नहीं सूझता जब पलक झपकते ही उनका करियर समाप्त हो जाता है। टीम के हर दो नायकों की तुलना में बाकी के 9 बहुत जल्दी भुला दिए जाते हैं और बाहर बेंच पर बैठे 2 दर्जन खिलाड़ियों को तो कोई याद भी नहीं रखता। इसलिए जल्दी से जल्दी पैसा कमाकर भविष्य सुरक्षित कर लेने की होड़ में बड़े बड़े खिलाड़ी और टीमें भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती देखी गई हैं। क्रिकेट और फुटबॉल की दुनिया में नीचे से लेकर सर्वोच्च स्तरों तक भ्रष्टाचार के अनेक मामलों की छानबीन चल रही है, लेकिन संभावना यह है कि सामने आए हर ऐसे मामले की तुलना में 10 और मामले ऐसे होंगे जो पकड़ में नहीं आ सके। क्रिकेट के सबसे शक्तिशाली नाम सटोरियों से जुड़े पाए गए हैं। फुटबॉल में भी भ्रष्टाचार की दीमक नीचे से लेकर ऊपर तक फैल चुकी है।
अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4। नीना वर्मा के साथ प्रोफेसर सिंह के रेडियो वार्तालाप को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनें। यह वार्तालाप आपको 2 बार सुनाया जाएगा।
अपनी हाल की बांग्लादेश की यात्रा के बारे में बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा कैसी रही?
मेरी यात्रा सुखद रही। वैसे तो मैं अपनी कंपनी के कार्य से गई थी, लेकिन मुझे बांग्लादेश में एक परिवार का अतिथि बनकर रहने का भी सौभाग्य मिला। होटल में रहने की अपेक्षा परिवार के साथ रहने से मुझे बांग्लादेश के लोगों की खातिरदारी का अनुभव और उनके साथ विभिन्न भाषाएं बोलने की उपयोगिता के विषय में विचार विमर्श करने का अवसर मिला।
क्या बांग्लादेश के लोग हिंदी में भी कोई रुचि रखते हैं?
जी हाँ, उनकी रोजमर्रा की बातचीत से हिंदी के प्रति उनका लगाव जाहिर था। उन्हें भेंट के रूप में देने के लिए मैं बॉलीवुड की कुछ फिल्में ले गई थी, जिसे पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए।
आपको परिवार के साथ रहकर कैसा लगा?
मैं परिवार के बच्चों के साथ बहुत हिलमिल गई थी। उन बच्चों के साथ मुझे बंगाली भाषा में बात करने का मौका मिला, जबकि वे लोग मुझसे हिंदी में बात करने के लिए उत्सुक रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं, बंगला भाषा बांग्लादेश के साथ साथ भारत में पश्चिम बंगाल की भी मातृभाषा है। दोनों देशों की बंगला भाषा के व्याकरण और लिपि एक समान है। मुख्य अंतर शब्दावली, उच्चारण और ध्वनि का है। मैं शीघ्र ही उनके उच्चारण की अभ्यस्त हो गई। वहाँ मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि लोगों से जुड़ने के लिए भाषा का कितना महत्व है। परिवार के सदस्य मुझे आसपास के दर्शनीय स्थान दिखाने ले गए, सुंदरवन घूमने और प्रसिद्ध बंगाल बाग को अपनी आंखों से देखने का अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा।
बांग्लादेश और भारत के बीच घनिष्ठता के क्या कारण हैं?
भौगोलिक रूप में बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है और ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों की संस्कृति, साहित्य, खानपान, सभ्यता और जीवन दर्शन में साम्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पड़ोसी देशों में परस्पर सौहार्द और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण निकटता है।
यह सांस्कृतिक संबंध समाज में किस रूप में झलकता है?
इसका एक अच्छा उदाहरण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की पाक प्रणाली है। दोनों क्षेत्रों का मुख्य आहार दाल भात रोटी और शाक है। अधिकांश जन मांसाहारी हैं और चूजे बकरी के गोश्त आदि के शौकीन भी, पर उनका सबसे प्रिय खाद्य विभिन्न प्रकार की मछलियों से बने व्यंजन हैं, जिन्हें वे सरसों के तेल में पिसी हुई अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर भूनकर पकाते हैं।
उनके दैनिक जीवन में हिंदी का क्या प्रभाव है?
दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में हिंदी के प्रयोग और हिंदी सिनेमा और गानों के प्रति उनका लगाव जाहिर है। किसी भी धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान में हिंदी गाने अवश्य सुनाई देंगे।
यह प्रभाव दैनिक जीवन तक ही सीमित है या विद्यालयों में हिंदी भाषा की शिक्षा पर भी इसका असर है?
दुर्भाग्यवश हिंदी भाषा की सुनियोजित शिक्षा के क्षेत्र में बहुत संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। कुछ प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था है, किंतु सप्ताह में केवल आधे घंटे के लिए हिंदी की शिक्षा का समय नियत करके प्रगति की आशा करना अनुचित होगा। कुछ वर्षों पहले ढाका विश्वविद्यालय में भी हिंदी शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। बहुत सारे छात्रों ने इसमें अपने नाम दर्ज करवाए। भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत हिंदी के शिक्षक भी भारत से आए, लेकिन कोर्स की फीस न भर पाने के कारण छात्रों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई।
क्या हिंदी को लोकप्रिय बनाने की और भी कोई गतिविधियां हैं?
अवश्य, कुछ निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में प्रयास करती हैं, लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व को आकर्षित न कर पाने के फलस्वरूप ऐसे प्रयास बहुत दिनों तक टिक नहीं पाते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं को सफल बनाने के लिए सबसे अधिक किसी ऐसे सशक्त नेता की आवश्यकता होती है जो निस्वार्थ भाव, लगन और प्रतिबद्धता से संस्था की सफलता के लिए अपना समय लगा सके। उसके अभाव में केवल कुछ इक्के दुक्के प्रयास किसी उल्लेखनीय प्रगति के लिए काफी नहीं है।
नीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास चार के ये विचार अब आप फिर से सुनेंगे। अपनी हाल की बांग्लादेश की यात्रा के बारे में बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा कैसी रही?
मेरी यात्रा सुखद रही। वैसे तो मैं अपनी कंपनी के कार्य से गई थी, लेकिन मुझे बांग्लादेश में एक परिवार का अतिथि बनकर रहने का भी सौभाग्य मिला। होटल में रहने की अपेक्षा परिवार के साथ रहने से मुझे बांग्लादेश के लोगों की खातिरदारी का अनुभव और उनके साथ विभिन्न भाषाएं बोलने की उपयोगिता के विषय में विचार विमर्श करने का अवसर मिला।
क्या बांग्लादेश के लोग हिंदी में भी कोई रुचि रखते हैं?
जी हाँ, उनकी रोजमर्रा की बातचीत से हिंदी के प्रति उनका लगाव जाहिर था। उन्हें भेंट के रूप में देने के लिए मैं बॉलीवुड की कुछ फिल्में ले गई थी, जिसे पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए।
आपको परिवार के साथ रहकर कैसा लगा?
मैं परिवार के बच्चों के साथ बहुत हिलमिल गई थी। उन बच्चों के साथ मुझे बंगाली भाषा में बात करने का मौका मिला, जबकि वे लोग मुझसे हिंदी में बात करने के लिए उत्सुक रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं, बंगला भाषा बांग्लादेश के साथ साथ भारत में पश्चिम बंगाल की भी मातृभाषा है। दोनों देशों की बंगला भाषा के व्याकरण और लिपि एक समान है। मुख्य अंतर शब्दावली, उच्चारण और ध्वनि का है। मैं शीघ्र ही उनके उच्चारण की अभ्यस्त हो गई। वहाँ मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि लोगों से जुड़ने के लिए भाषा का कितना महत्व है। परिवार के सदस्य मुझे आसपास के दर्शनीय स्थान दिखाने ले गए। सुंदरवन घूमने और प्रसिद्ध बंगाल बाग को अपनी आंखों से देखने का अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा।
बांग्लादेश और भारत के बीच घनिष्ठता के क्या कारण हैं?
भौगोलिक रूप में बांग्लादेश तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है और ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों की संस्कृति साहित्य, खानपान, सभ्यता और जीवन दर्शन में साम्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पड़ोसी देशों में परस्पर सौहार्द और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण निकटता है।
यह सांस्कृतिक संबंध समाज में किस रूप में झलकता है?
इसका एक अच्छा उदाहरण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की पाक प्रणाली है। दोनों क्षेत्रों का मुख्य आहार दाल भात रोटी और शाक है। अधिकांश जन मांसाहारी हैं और चूजे बकरी के गोश्त आदि के शौकीन भी, पर उनका सबसे प्रिय खाद्य विभिन्न प्रकार की मछलियों से बने व्यंजन हैं, जिन्हें वे सरसों के तेल में पिसी हुई अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च और टमाटर भूनकर पकाते हैं।
उनके दैनिक जीवन में हिंदी का क्या प्रभाव है?
दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में हिंदी के प्रयोग और हिंदी सिनेमा और गानों के प्रति उनका लगाव जाहिर है। किसी भी धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान में हिंदी गाने अवश्य सुनाई देंगे।
यह प्रभाव दैनिक जीवन तक ही सीमित है या विद्यालयों में हिंदी भाषा की शिक्षा पर भी इसका असर है?
दुर्भाग्यवश हिंदी भाषा की सुनियोजित शिक्षा के क्षेत्र में बहुत संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। कुछ प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था है, किंतु सप्ताह में केवल आधे घंटे के लिए हिंदी की शिक्षा का समय नियत करके प्रगति की आशा करना अनुचित होगा। कुछ वर्षों पहले ढाका विश्वविद्यालय में भी हिंदी शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। बहुत सारे छात्रों ने इसमें अपने नाम दर्ज करवाए। भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत हिंदी के शिक्षक भी भारत से आए, लेकिन कोर्स की फीस न भर पाने के कारण छात्रों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई।
क्या हिंदी को लोकप्रिय बनाने की और भी कोई गतिविधियां हैं?
अवश्य, कुछ निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में प्रयास करती हैं, लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व को आकर्षित न कर पाने के फलस्वरूप ऐसे प्रयास बहुत दिनों तक टिक नहीं पाते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं को सफल बनाने के लिए सबसे अधिक किसी ऐसे सशक्त नेता की आवश्यकता होती है जो निस्वार्थ भाव लगन और प्रतिबद्धता से संस्था की सफलता के लिए अपना समय लगा सके। उसके अभाव में केवल कुछ इक्के दुक्के प्रयास किसी उल्लेखनीय प्रगति के लिए काफी नहीं है।
नीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास चार और यह परीक्षा समाप्त हुई।
This is the end of the examination.